अभिमन्यु समर्थ की बात का जवाब देने ही वाला था कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। समर्थ, जो अभिमन्यु से कुछ कहने ही वाला था, उसकी बात अधूरी रह गई। वो कुछ बोल नहीं पाया और दरवाज़े की ओर देखने लगा। थोड़ी देर पहले समर्थ के कमरे में आने के कारण दरवाज़ा खुला ही था, इसलिए अर्पिता अभिमन्यु के कमरे में आ गई। उसके हाथ में पीले रंग की एक शेरवानी थी। उसने समर्थ की ओर एक नज़र देखी, पर उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए सीधे अभिमन्यु से बात करते हुए बोली, भाई साहब, यह आपकी शेरवानी है, इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए, आपकी हल्दी का समय हो गया है। आपकी हल्दी उतरने के बाद ही भाभी साहब को हल्दी लगा पाएंगी, इसलिए कृपया जल्दी तैयार हो जाइएगा। अर्पिता शेरवानी नीचे रखने ही वाली थी कि समर्थ आगे बढ़ा और अर्पिता के हाथ से शेरवानी लेते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं अभी को तैयार करके लाता हूँ। अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप अभिमन्यु के कमरे से बाहर चली गई। समर्थ ने शेरवानी अभिमन्यु को देते हुए कहा, चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अभिमन्यु अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। समर्थ उसे भ्रम से देखने लगा। इधर इप्सिता आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, अभिमन्यु क्या कर रहे होंगे, क्या उन्हें हल्दी लग गई होगी, उन्हें कॉल करूं क्या। इप्सिता के मन में यही विचार चल रहे थे, तभी इप्सिता की माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा नंदिनी इप्सिता के जेवर देख रही थी और इप्सिता आराम से लेटी हुई थी। उन्होंने दोनों को आराम से लेटे बैठे देखकर तेज आवाज में कहा, ये तुम दोनों क्या कर रही हो, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, तुम्हें पता है ना हल्दी का समय होने वाला है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपनी माँ को कमरे में आते देख इप्सिता भी जल्दी से उठकर बैठ गई। नंदिनी इप्सिता की माँ की बात सुनकर बोली, आंकी, मैं तो इशू के जेवर चुन रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा जेवर इसके लहंगे पर सूटेगा। इप्सिता की माँ ने नंदिनी की बात सुनकर कहा, तुम्हें जेवर चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अच्छे से सजा संवार कर तैयार कर दो, क्योंकि हल्दी के फंक्शन में ये जेवर नहीं बल्कि फूलों के जेवर पहनेगी। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है आंटी, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में इप्सिता को तैयार करके नीचे लाती हूँ। इप्सिता की माँ के जाते ही नंदिनी इप्सिता को तैयार करने लगी। इधर अभिमन्यु को हल्दी लग रही थी। सब लोग अभिमन्यु को एक एक करके हल्दी लगा रहे थे। सभी बड़े खुश थे, लेकिन कियारा और अभिमन्यु के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वे दोनों खुश नहीं हैं। अर्पिता ने अभिमन्यु को हल्दी लगाने के बाद हल्दी का कटोरा उठाया और अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, मासा, भाईसा को हल्दी लग गई है, तो क्या अब मैं ये हल्दी लेकर भाभीसा के पास जाऊं। अर्पिता की बात सुनकर सास ने धीरे से सिर हिलाया। वो हल्दी का कटोरा लेकर आगे बढ़ रही थी कि उसकी साड़ी में उसका पल्लू फंस गया और वो गिरने वाली थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गिरने से बचा लिया। जैसे ही अर्पिता ने उस तरफ देखा, वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटी। सामने समर्थ खड़ा था। उसने अर्पिता की ओर देखकर कहा, आराम से, आपको कहीं लगी तो नहीं अर्पिता। अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी समर्थ उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, क्या बात है, आप कहाँ जा रही हैं। अर्पिता ने हल्दी के कटोरे की ओर देखते हुए कहा, हम भाभीसा के पास भाईसा की हल्दी लेकर जा रहे हैं। समर्थ ने कहा, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। अर्पिता ने समर्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। समर्थ अर्पिता के साथ साथ होटल के दूसरी तरफ आ गया। जैसे ही इप्सिता की माँ ने अर्पिता को देखा, वो जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, अरे अर्पिता, आप यहाँ। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी भाभीसा की हल्दी की रस्म शुरू नहीं हुई ना। इप्सिता की माँ ने जवाब दिया, नहीं, वो अभी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में वो आएगी, आप बैठिए। अर्पिता उनके कहने पर वहीं बैठ गई। समर्थ वहीं चुपचाप खड़ा था। उसे खड़ा देखकर इप्सिता की माँ ने कहा, अरे समर्थ, आप क्यों खड़े हो, बेटा आप भी बैठिए। समर्थ अर्पिता के बगल में बैठ गया। अर्पिता उसे हैरानी से देखने लगी। थोड़ी देर बाद नंदिनी इप्सिता को लेकर सीधे हॉल की ओर आ रही थी। जैसे ही अर्पिता ने इप्सिता को देखा, वो उठकर खड़ी हो गई। उसे खड़े होते देख समर्थ की नज़र भी अर्पिता पर गई। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर मुस्कुराकर सामने से आते हुए इप्सिता की ओर बढ़ गए। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, भाभीसा कितनी खूबसूरत लग रही हैं, हमें तो लग रहा है भाभीसा पर हम ही नज़र लगा देंगे। समर्थ उसके जवाब देने से पहले ही इतना बोलकर वो आगे बढ़ गई। नंदिनी ने एक तरफ से इप्सिता को पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से अर्पिता ने उसे पकड़ लिया। उसे लाकर एक पीले रंग की बड़ी सी बेंच पर बिठाया, जो वहां फूलों से सजे मंडप के बीच में रखी हुई थी। चारों तरफ पीले रंग के फूलों से बहुत ही अच्छी सजावट थी, सब ताज़े फूल थे। उसके पीछे बैकग्राउंड में बड़े बड़े अक्षरों में हल्दी शब्द लिखा हुआ था। आसपास पीले रंग के गुब्बारे और सजावटी सामान थे। पूरी सजावट काफी अच्छी लग रही थी। इप्सिता ने फूलों के जेवर के साथ पीले रंग का भारी लहंगा पहना हुआ था, जो उस पर बहुत जच रहा था। जैसे ही नंदिनी ने उसकी ओर ध्यान से देखा, वो खुद आगे आकर उसके मांग टीके को ठीक करने लगी। तभी समर्थ उसके पास आकर बोला, वाह भाभीसा, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल। इप्सिता समर्थ की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। नंदिनी की नज़र समर्थ पर पड़ते ही वो उसे देखती रह गई। इप्सिता समर्थ की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराई। तभी इप्सिता की माँ वहाँ आई और अर्पिता की ओर देखते हुए बोली, चलिए हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। इप्सिता चुपचाप वहीं बैठी थी। तभी समर्थ ने कहा, हल्दी लगाने से पहले भाभीसा, मैं आपकी एक तस्वीर ले लूँ। इप्सिता अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उन्होंने कहा, अरे हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ले लो। जैसे ही समर्थ ने अपना मोबाइल फोन निकाला, वो इप्सिता की तस्वीर लेने ही वाला था कि नंदिनी वहां से उठकर दूर जाने लगी। तभी समर्थ ने कहा, अगर आप भी बैठी रहेंगी तो भी कोई परेशानी नहीं है। समर्थ के मुंह से ये बात सुनकर नंदिनी उसकी ओर देखकर बोली, नहीं, हमें लगा शायद आप अपनी होने वाली भाभी की अकेली तस्वीर लेना चाहते हैं, इसलिए हम आपको जगह दे रहे थे। नंदिनी की बात पर समर्थ हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी औपचारिकता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर तस्वीर में हमारी भाभी सा के साथ उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। समर्थ की ये बात सुनकर आखिरकार नंदिनी भी मुस्कुराते हुए वहीं रुक गई। समर्थ ने दोनों की तस्वीरें क्लिक की और फिर उसने फ्रंट कैमरे से अपने साथ भी एक सेल्फी ली। तस्वीरें क्लिक करने के बाद वो सीधे मंच से नीचे उतर आया। एक एक करके सब लोग हल्दी की रस्म को पूरा करने में लग गए। सब इप्सिता को बड़े ही प्यार से हल्दी लगा रहे थे। इप्सिता के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान नजर आ रही थी। जैसे ही हल्दी का फंक्शन खत्म हुआ, समर्थ उसके पास आकर बोला, भाभी सा, आप पर यह हल्दी का रंग बहुत जच रहा है, क्या आप देखना चाहेंगी कि आपका होने वाला पति हल्दी लगाकर कैसा लग रहा था? इप्सिता समर्थ की ये बात सुनकर हाँ बोलने ही वाली थी कि वो चुप हो गई। उसने अपने मन में कहा, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, इतनी बेताब होकर अगर हाँ बोलूंगी तो नंदिनी मेरा कितना मजाक उड़ाएगी, और अर्पिता, वो तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। इप्सिता यही सोच रही थी तभी समर्थ ने कहा, क्या बात है भाभी सा, आप इतनी सोच में क्यों पड़ गई, नहीं देखनी कि आपको अभिमन्यु की तस्वीर? समर्थ की बात सुनकर नंदिनी बोली, अब आप ऐसे पूछेंगी तो कौन सी लड़की हाँ बोलेगी, मुझे तो देखनी है। वैसे भी अगर आपको दिखानी है तो दिखा दीजिए, क्योंकि मेरी यीशु तो हाँ कभी नहीं बोलेगी, वो बहुत शर्मीली है। नंदिनी ने ये बातें बोली तो इप्सिता ने धीरे से उसे चुटकी काटी ताकि वो उसके बारे में और बकवास ना कर पाए। अपना हाथ सहलाते हुए नंदिनी ने भी इप्सिता की ओर देखा, वो उसके ऐसा करने का मतलब समझ गई थी।
समर्थ नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भाभी सा, अब आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो अभिमन्यु समझ लीजिए आपका ही है, एक तो दिनों में तो वो पूरी तरह से आपका हो जाएगा, तो फिर अब किस बात की शर्म? इप्सिता समर्थ की बातें चुपचाप सुन रही थी। जैसे ही समर्थ ने कहा कि अभिमन्यु आपका ही है, इप्सिता का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई। इप्सिता शर्मा रही थी, उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए थे। नंदिनी ने इप्सिता को इस तरह शर्माते हुए देखकर कहा, ओहो, किसी को तो जीजू के नाम से ही इतनी खुशी मिल रही है, बस कर ईशु, तूने अपने पूरे गाल लाल कर लिए हैं, और कितना शर्माएगी? समर्थ नंदिनी की बात सुनकर बोला, अच्छा ठीक है, हम आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे, ये लीजिए देखिए अपने होने वाले पति की तस्वीरें। इतना बोलकर समर्थ ने अपने मोबाइल फोन की गैलरी ओपन की और उसमें अभिमन्यु की तस्वीरें इप्सिता के सामने कर दी। इप्सिता अभिमन्यु की तस्वीरों की ओर देख रही थी। तस्वीरें देखते हुए उसने देखा कि अभिमन्यु ने पीले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और उसके गाल पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अभिमन्यु को ऐसे गंभीर देखकर इप्सिता के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो थोड़ी सोच में पड़ गई। नंदिनी ने जैसे ही ये बात नोटिस की, उसने समर्थ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, एक मिनट, मुझे दिखाइए तो मैं भी देखूं अपने होने वाले जीजू को। इतना बोलकर वो समर्थ के फ़ोन में जितनी भी अभिमन्यु की तस्वीरें थीं उन्हें स्क्रोल करके देखने लगी। उसने इप्सिता के कान के पास जाकर कहा, जीजू बहुत हैंडसम है, लेकिन शायद वे शादी के कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही है। समर्थ ने जैसे ही नंदिनी की ये बात सुनी, वो धीमी आवाज़ में बोला, हाँ, इतना काम है और सब कुछ उसे अकेले ही देखना था, इस वजह से शायद वो थोड़ा थक गया होगा। नंदिनी समर्थ की ओर देख रही थी, तभी इप्सिता की माँ ने समर्थ को बुलाया। वो उनकी ओर देखते हुए बोला, आया आंटी। इतना बोलकर वो सीधे इप्सिता की माँ के पास चला गया। उसका फ़ोन नंदिनी के हाथ में ही था। इप्सिता नंदिनी की ओर देख रही थी। नंदिनी उसके बगल में बैठी और उसने अभिमन्यु की तस्वीर को जूम करते हुए कहा, मानना पड़ेगा, जीजू जितने स्मार्ट हैं उनका दोस्त भी उतना ही स्मार्ट है। इप्सिता नंदिनी के मुंह से ये बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, चुप करो तुम, अभी अगर समर्थ ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? नंदिनी ने कहा, अरे सुनते हैं तो सुन ले, मैं तो वैसे भी उनसे अपने दिल की बात कहने के लिए मरी जा रही हूँ। इप्सिता नंदिनी की ये बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। तभी नंदिनी ने कहा, इतना हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, मैं तो समर्थ पर पूरा प्रयास करने वाली हूँ, कृपया अब मुझे रोकना मत, क्योंकि मुझे पता है शादी तक का ही मेरे पास वक्त है। मैं सोच रही हूँ कि अपने दिल की बात बोल ही दूँ, वरना पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। क्रमशः